कौन सभी कौन सी कला में है? कौन सी कला में? उठते सीमा में। अच्छा, कलाएं चेंज होती रहती हैं। एक चिंतन आपको देना चाहता हूँ। पहले सतयुग से कलाएं तो सबकी कम होती हैं, सब जानते हैं, लेकिन कुछ आत्माओं का स्टेटस बढ़ता है। कलाएं कम होंगी, स्टेटस बढ़ेगा। पता है ना, जैसे राम भी सतयुग के शुरू से आ गए। कलाएं जैसे सबकी कम हुई, उनकी भी कम हुई, लेकिन जब 14 पर पहुंचे स्टेटस हाईएस्ट, तब उन्हें मिला। तो इसमें चिंतन करेंगे। ऐसा बहुत आत्माओं के साथ होता है, कलाएं कम होती आई, स्टेटस बढ़ता गया। तो प्रारब्ध के पीछे रहस्य क्या क्या है? और सुख संगति, कब किसको राज्य अधिकार मिलेगा और क्यों? किसी को त्रेता के बीच में, किसी को सतयुग के बीच में, किसी को सतयुग के अंत में, बहुत सारे होंगे ना, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, इन सबके पीछे रहस्य क्या क्या है, उस पर सभी चिंतन करेंगे। बाबा ने बहुत पहले सेवन में उसके आसपास एक बड़ी गुहे बात कही थी, अब भी वो आपको गुहे लगेगी, तब भी हमें बहुत गुहे लगी थी। बाबा ने कहा जो अस्वतन है, दो बातें उनके लिए कही। अस्वतन सभी हाईएस्ट लेवल की आत्माएं तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, सिर्फ बाबा के बाद उनका ही नंबर आएगा। हर एक रतन की एक एक मुख्य विशेषता होती है, एक एक मुख्य जिसके कारण वो प्रसिद्ध होते हैं, उनकी पूजा होती है भक्ति में। दूसरा, अब जो राज की बात कही वो ये थी कि हर एक में एक एक कमी भी रह जाती है जिसके कारण उनके नंबर बनते हैं। बाबा के सब तो ये थे, वो कमी भी मुख्य कमी रह जाती है जिसके कारण उनके नंबर बन जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा चिंतन का विषय है। तो प्रारब्ध की गति क्या है, प्रारब्ध का बेस क्या क्या है, किस आधार पे किसी भी आत्मा का भाग्य निर्माण होता है, बहुत बातें हो सकती हैं, इसमें चिंतन कर दिया। तो हम सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी, ये बात फिर सब आत्माओं के साथ भी है, हम सब ब्राह्मण आत्माएं अपनी एक उस महानता को भी जाने जो हमारे अंदर है ही, उसको जानने से हम उसे यूज करेंगे और वो हमारी चढ़ती कला का, विश्व सेवाओं का आधार बन जाएगा। और हम अपनी एक उस कमजोरी को भी जानने जिसे पार करके हम बहुत आगे निकलेंगे, महानताओं को जानने से भी बहुत आगे, और कमी पर काम करेंगे तो भी बहुत आगे, दोनों करने हैं हमें, क्योंकि बहुत आत्माओं में ऐसा हो रहा है कि उनके पास कोई कमी काम कर रही है, लेकिन उनका एहसास, अवेयरनेस उन्हें नहीं है। किसी व्यक्ति को जोर से बोलने की आदत है, उसको पता नहीं कि ये उसकी कमी है, वो समझता है बिल्कुल राइट। कोई व्यक्ति दूसरों को अपशब्द बोल रहा है, वो भी समझता है मैं राइट हूँ, ये सुधरेंगे नहीं जब तक नहीं बोलेंगे। आप देख सकते हैं, दूसरों को देखें जरा इस भाव से, साक्षी होके संसार में बहुत आत्माओं के पास अपनी कमियों की महसूसता नहीं है, इसके कारण वो रुके रहते हैं। मानताओं की महसूसता भी हो, एक हमारे साथी पहले के वो भी है, मैं उनका आदर कर रहा हूं, तुम्हारे पास बुद्धि बहुत अच्छी है उसके पास अभी बुद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन तुम अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते हो। अब तो हम उसे ये भी नहीं कह सकते, पर तब हम फ्रेंड थे, बिल्कुल एक साथ किचन में ही काम करते थे, तो मैं उसे कहा करता तुम्हारे पास इतनी अच्छी बुद्धि है, तुम उसका सदुपयोग करके महायोगी बन सकते हो, पर उसने किया नहीं। प्रारब्ध की गति में इस बात पे सभी विशेष ध्यान देंगे, बुद्धि है उसका कैसा उपयोग हम कर रहे हैं, इस पे डिपेंड कर रही है हमारी सारी गति, और वही बीज पड़ रहे हैं भविष्य के लिए भी, उस तरह से हम बुद्धि का उपयोग करें। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, सब कहानी माने एक अनुभव एक माता का, उसके बाद बुद्धि बहुत अच्छी है, बताया मुझे उसने जो वो पढ़ती थी, अब तो बड़ी हो गई बहुत, कहा मेरा महाराष्ट्र बोर्ड में चौथा पांचवा नंबर ही आता है, तो बहुत होशियार रही, तो मेरे से प्रश्न पूछा आरबीआई सेवा में, तो मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे खुशी क्यों नहीं रहती। तो मैं जानता हूँ उसे खुशी क्यों नहीं रहती, मैंने उसे कहा तुम अपनी बुद्धि का निगेटिव उपयोग करती हो, अगर उसका सदुपयोग कर लो, इसी को तुम इस तरह ले लो मुझे खुशी कैसे रहे मुझे चिंतन करना है। अब उसकी बुद्धि का ऐसा उपयोग हो रहा है कि उसे पता ही नहीं कि उसे खुशी क्यों नहीं रहती, और वो बुद्धि का सदुपयोग कर सकती है कि उसे पता चले कि खुशी क्यों नहीं रहती, और वो चीजों को ठीक करें। हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करेंगे, बुद्धि सबके पास ही बहुत सुंदर है, हमें ये बात भी बहुत अच्छी तरह जाननी चाहिए, हर एक का जो ब्रेन है वो भी बहुत अच्छा है, बुद्धि भी बहुत अच्छी है, परंतु उसमें क्या हुआ है हर एक के साथ, बचपन से कुछ चीजें ऐसी मिक्स हो गई हैं, लेयर हैं, कुछ परत है, कुछ दबाव है कि बुद्धि में भेद हो गए अलग अलग तरह की। मैं एक बहुत अच्छा प्रयोग आजकल करा रहा हूँ, मैंने पहले बताया हम सब भी अपने लिए कर सकते हैं, आप खुलते ही हम सोचेंगे जिन्हें ज्ञान है मेरे पास बाबा की दी हुई दिव्य बुद्धि है, मैं दिव्य बुद्धि संपन्न हूँ, बुद्धि का विकास होने लगेगा, उठते ही करेंगे, ये सब कॉन्शियस माइंड का यूज है, अंतर्मन की शक्ति का यूज है, ये हम संकल्प करेंगे, इसमें हमें पूरा विश्वास हो, ये चीजें तब काम करती हैं कि आत्मा इसको स्वीकार कर चुकी हो, यहाँ विश्वास का अर्थ है स्वीकार करना। जैसे मैंने कई बार सुनाया है, मैं कईयों से कराता हूँ, जो गरीब हैं वो हमेशा ये कहते रहते हैं हम गरीब हैं, हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हम अपने घर में ये चीज नहीं खरीद सकते, हमारे पास पैसे नहीं, हम तो गरीब हैं, बाबा हम तो गरीब हैं, हम आपकी सेवा भी नहीं कर सकते। इससे क्या हो रहा है कि उनका अंतर्मन इसको स्वीकार कर रहा है और वो गरीब ही रहेंगे। देखिए मैंने एक अनुभव सुना रहे थे आजीव से, उसने जब अभ्यास किया मैं धनवान हूँ तो हुआ नहीं कुछ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस चीज को अंतर्मन ने स्वीकार नहीं किया, एक मन कह रहा था तुम गरीब हो कहाँ साहूकार हो, दूसरा संकल्प किया जा रहा था मैं साहूकार हूँ, कन्विंस करना अपने को पूरी तरह हम दिव्य बुद्धि संपन्न हैं या नहीं स्वीकार कराएंगे आप, कोई कोई को स्वीकार करने में दिक्कत होगी, तो कहेंगे हमारे पास इतनी अच्छी बुद्धि नहीं, इसमें अच्छी बुद्धि का प्रश्न नहीं है, ये है दिव्य बुद्धि। दिव्य दिव्य बुद्धि का अर्थ है पवित्रता और ज्ञान से युक्त बुद्धि। जहाँ विचार ज्ञान युक्त हो और स्थिति पवित्र हो वहाँ दिव्यता है। तो ये संकल्प सभी देंगे ना, बुद्धि का विकास होगा और सभी एक चिंतन करेंगे, मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है, बुद्धि मेरे लिए वरदान बन जाए। सोचेंगे सब, क्योंकि ये हर एक का व्यक्तिगत चिंतन होना चाहिए। सबके पास दिव्य बुद्धि है या नहीं है, माताएं क्या समझती है या नहीं। मैं देख रहा हूँ चेहरे सबके, सोच रही है माताएं है तो सही, संतो भी है कुछ भाइयों के पास है दिव्य बुद्धि। सबसे ज्यादा दिव्य बुद्धि उसकी मानी जाएगी जिसमें ज्ञान के सिवाय कुछ न चलता हो। ज्ञान अर्थात दिव्य विवेक भर गया हो बुद्धि, बुद्धि पात्र है उसमें हम भरते हैं दिव्य विवेक, उस विवेक से हम करते हैं निर्णय और बहुत सारे काम। सारी शक्तियां इस तरह बुद्धि से विवेक के आधार पर काम करती। तो सभी आज अपने लिए स्वचिंतन करेंगे, बहुत अच्छा। एकांत में जाएं आप, रात को सोने से पहले रहें एकांत में, मुझे अपनी बुद्धि का श्रेष्ठ उपयोग करना है, बाबा से सब कुछ प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण योगयुक्त होने के लिए। देखो किसी किसी के साथ एक समस्या रहती है जीवन में, यहाँ भी कईयों के साथ होगी, कि कोई एक व्यक्ति उसे 84 जन्मों का भाग्य नहीं बनाने देता। एक व्यक्ति, मेरे पास ऐसे केस बहुत आते हैं, मैं उन्हें पूछता हूँ। माता कहती है मेरा एक लड़का है, हैं तो कई पर एक ऐसा है उनमें से जिसके कारण मैं बहुत दुखी रहती हूँ, मेरा योग नहीं लगता, मुझे खुशी नहीं देती। मैं उनसे पूछता हूँ कि अभी उसकी कम बात है लेकिन माँ का मोह ज्यादा है इसलिए वो परेशान ज्यादा है। मैं उनसे पूछता हूँ ये आप ये जो आत्मा है पिछले जन्म में भी आपका बेटा था, कहती नहीं ये तो संभव नहीं, अगले जन्म में होगा का हो तो ज्ञान में नहीं है, संभव ही नहीं। मैं कह थोड़े से समय के लिए तुम अपने 84 जन्मों के भाग्य को नष्ट कर रही हो, जरा डिटैच हो जाओ। डिटैच हुआ नहीं जाता माताओं से, माताओं को जानना चाहिए, पिताओं को भी जानना चाहिए। क्या अगर बच्चों के लिए आप चिंता कर रहे हैं तो आप बच्चों को कमजोर कर रहे हैं, स्वयं को तो कर ही रहे हैं, स्वयं की तो स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन जिनकी चिंता कर रहे हैं उनका भी हाल खराब हो रहा है, क्योंकि आपसे निगेटिव फीलिंग्स उनको जा रही हैं। मैंने पिछली बार भी यहाँ काम दिया था, फिर से उसे रिपीट करेंगे, सभी अपने लिए और दूसरों के लिए। दूसरे माना आपको परिवार है तो बच्चों के लिए, युगल है उसके लिए, अच्छा सोचना प्रारंभ। माँ बाप बच्चों के लिए चिंतित हैं, मेरे पास कली है एक माता, बच्चों की बहुत चिंता, एक बच्चा बहुत होशियार, दूसरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बारहवीं में एक बार फेल हो गया, दूसरी बार एग्जाम दिया है अभी, बाप का प्रेशर है तुम्हें भी इंजीनियर बनना है, हो रहा है वो फेल, उसको बनाना है इंजीनियर, तो लड़का दबाव में है। माँ समझती, माँ को मैंने समझाया कि इससे काम नहीं चलेगा। मैंने उसे पूछा उसकी रुचि किसमें है, तो उसने बताया पता नहीं कंप्यूटर का कोई फील्ड होता है कि इसमें बहुत एक्सपर्ट है। मैंने कहा इसकी उसको नौकरी दिला दो, नौकरी मिल रही है उसको, थोड़ा सा पैसा मिलेगा और उसको बढ़ने दो आगे, इसमें वो आगे बढ़ जाएगा। तो एक तो बच्चे ऊपर प्रेशर नहीं, प्रेशर किसी भी तरह कल्याणकारी नहीं है, किसी भी तरह नहीं। उसमें खुद को भी शारीरिक कष्ट होंगे, शारीरिक भी, और बच्चे की बुद्धि रुक जाएगी, मानसिक दबाव, अनेक नुकसान। इसलिए थोड़ा सा ओपन करो अपने को, सभी चिंता नहीं, अब कुछ भाग्य पे छोड़ो, कुछ बाबा पे छोड़ो, कुछ अपनी शुभ भावनाओं से करना चाहिए। सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं है ना, इसलिए बच्चे भाई सारे बड़े बड़े ऑफिसर बन जाए, अब उनका अपना भाग्य, उनके अपनी एजुकेशन, उनकी बुद्धि, ये सब भी तो कुछ है ना, थोड़ा हल्का करना है अपने को। तो जो है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना है, चिंता नहीं, ये सभी को सिखाना है। हम यदि किसी की चिंता कर रहे हैं तो हम उसे निर्बल कर रहे हैं। बच्चों के लिए ये सोचने की बजाय इनका क्या होगा पता नहीं, अगर ये सोच रहे हैं माँ बाप रोज मेरे बच्चों का पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा होगा, तो क्या हो जाएगा नुकसान, यही होगा जो वो सोच रहे हैं, बिखर जाएंगे बच्चे, पता नहीं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहेंगे। इसके बदले ये विचार क्यों न कर लिया जाए, इन सब का भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा, तो कैसा अच्छा रहेगा। ये संकल्प तुरंत उनके जीवन को प्रभावित करेंगे, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, खराब नहीं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा करो। अभी भी एक जगह प्रोग्राम था तो एक माता मिली लौकिक में, हमारी रिलेटिव थी, उनके घर गए, हमें पास्ता सेंटर गए, तो कहा मेरे इस बिच्छू को समझाओ, समझिए ना, लड़का था छोटा, उसका नाम उसने रख दिया था बिच्छू, कहा ये काटता ही रहता है, छोटा ही काफी, 10 साल से कम कम होगा, 8 साल का होगा, ये बिच्छू है इसे समझाओ। दूसरी माता है उसको हंसने लगी, क्योंकि तभी पब्लिक प्रोग्राम हुआ था, मैंने ये बात सिखाई थी कि माताएं अपने बच्चों को गलत शब्द न बोला, बोलती हैं कोई तेज बच्चा हो ये तो राक्षस है, तो वो वैसा ही बनेगा, ये बहुत अच्छी तरह जान ले वो वैसा ही बनेगा। तो मैंने उसको कहा कि आज से इसका नाम तुम जो इसे कहती हो ना बिच्छू, वो बार बार यही कहती तू तो बिच्छू है, तो वो और दंग तेज मारता है, मारो। मैंने कहा इसका नाम आज से हंस, हंस रही थी वो, उसको लग तो रहा था मैं गलती कर रही हूँ। हमारी भावनाएं हमें समझ लेना चाहिए, हमारे पास बहुत सारी पावर्स भी है इस समय, समझते हैं ना सभी, हमारी भावनाएं, हमारे संकल्प, हमारे गोल दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं। ये बात हमें सहज नहीं लेनी है कि कुछ बोल दिया क्या होता है, इससे उसका इफेक्ट दूसरों पर जा रहा है। तो सभी अपने लिए अच्छा सोचना प्रारंभ करें, पहले अपने, फिर बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए भी अच्छा सोचें। देखो हमारे पास तो अच्छा सोचने के लिए कितना माल मसाला है या नहीं। आप दोनों बार आज से, दोनों बार माना दोपहर में जब रेस्ट के लिए जाते हैं, रात को जब सोने जाते हैं, चारपाई पर लेटते ही अपने लिए सुंदर चिंतन प्रारंभ करना है। जब आप सुंदर चिंतन प्रारंभ करेंगे तो बहुत सारा चिंतन आपके सामने आएगा। यहाँ से शुरू करें, कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान इस तरह हमारे पास आ जाएगा। कितना सुंदर भाग्य है मेरा, भगवान के बहुत समीप उसको अपना कह रहे हैं। चिंतन सुन करो, कितना अच्छा समय हाथ में आया है कि भाग्य बनाना हमारे अधिकार में आ गया है। कितना अच्छा हुआ भगवान ने याद दिलाया तुम महान हो। चिंतन सुन करो, समझ में ना आए तो स्वमान शुरू कर देना, प्राप्तियां स्वमान, दो चीजें याद करेंगे तो बहुत सुंदर चिंतन होने लगेगा। इसका इफेक्ट देखें आप, हमारा शेष चिंतन हमारी सोई हुई शक्तियों को, योग्यताओं को, महानताओं को जागृत करता है। वो हमारे अंतर मन में सब कुछ भरा हुआ है, ये सब उसे जलाएगा, सर्व करेंगे आपसे। ठीक है, पसंद है सबको? बिल्कुल, इसको नेचर बना गई। ये आज दिन का प्रोग्राम नहीं, ये सदा का प्रोग्राम। इसको हम ऐसी अच्छी नेचर बना ले, बस जैसे ही लेके और चिंतन का। अब 7 दिन अगर कर लेते हैं तो आपकी बेड क्या हो जाएगा, बेड में ये वाइब्रेशन चले जाएंगे, चाहे गद्दा रह जाए, जो भी आपके पास है। और जैसे ही आप लेटेंगे चिंतन प्रारंभ, वो आपको मोटिवेट करेंगे, चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। तो अपनी बेड को बहुत अच्छा बना दें आज से। बेड, वैसे तो नाम बेड दूसरा भी है ना, डीएवी बेड वो भी, लेकिन बेड हमें बेस्ट बनाएगी, बहुत अच्छा अनुभव होगा। सबको ये करना है, 7 दिन करेंगे। और अगर टाइम भी आपका फिक्स हो कि भी दिन में आपको 2 बजे 1 बजे जब भी आप रेस्ट में जाते हैं, तो टाइम का बड़ा महत्व है। उसी टाइम वो चिंतन का फ्लो प्रारंभ हो जाता है। रात को ही हमें 10:15 बजे 10:30 बजे सोने के लिए चल जाना है, 10 बजे या किसी को उससे पहले फिक्स करके बस वो चिंतन प्रारंभ करें। अपने अंतर मन में भर देंगे, आज से हमें बहुत सुंदर चिंतन में सोना है। और इस चिंतन के साथ हम बाबा को थैंक्स भी करते रहेंगे। बहुत सुंदर चीज है ये, बहुत सुंदर। बाबा को थैंक्स देने से हमारा चित्त उसके लिए प्यार से भरता जाता है, और हमारे द्वारा इस सारे ब्रह्मांड में प्यार की तरंगें फैलने लगती है, जो बहुत बड़ी चीज है, जो संसार को बदलने में मुख्य भूमिका निभाएगी। जिसे प्योरिटी निभाती है, वैसे ही प्यार और खुशी की तरंगें यदि हमसे सारे इस स्पेस में जाती है, इसको लोग ब्रह्मांड कहते हैं। बाबा ने तो ब्रह्मांड ब्रह्म लोग को कहा है, पर लोग इसको ब्रह्मांड कहते हैं। सारे ब्रह्मांड में जाएंगे, बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि ये फिर रिटर्न होकर जो क्रिएटर है उसके पास आती है। हम इसको भेजेंगे, ये वापस बहुत चीजें लेके साथ में हमारे पास आती है। अब हमारे पास बाबा के 2 दिन बचे हैं ना, कल और परसों। 2 दिन हम बहुत अच्छी साधना करेंगे, कल की साधना। और किसी को ख्याल है कुछ क्या करेंगे? मुझे जो एक बहुत प्रिय चीज लगती है, आपको भी लगती होगी, मैं बता देता हूँ। प्रारंभ की रात हाँ, वो आप चिंतन करें, मैं उस पर बता नहीं रहा हूँ कुछ, फिर बताएंगे। मैंने लिखा बहुत कुछ इसके पीछे अपने पास, कि हमारी हर चीज से प्रारंभ कैसे बनती है। हर चीज संगम युग पर हमारा हर कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करता है, हमारी मुख्य योग्यताएं हमारे भविष्य को निर्धारित करती हैं, हमारी मुख्य कमजोरियां भी भविष्य को अफेक्ट करती हैं, हमारी जो भावनाएं हैं वो भी करती हैं। मान लो किसी में यहाँ देने का संस्कार है, तो चारों युग दे देंगे। किसी में यहाँ स्वतः राज करने का अधिकार हो गया, दूसरों पे राज करने की कला आ गई, दूसरों का अर्थ राज करने का अर्थ इंचार्ज बनना नहीं, इसका अर्थ क्या है? मान लो आपके साथ 5 साथी हैं, आप उनके इंचार्ज हैं, आप परफेक्ट राजा हैं, इसकी निशानी क्या होगी? हाँ, बिना बोले वो करे, उनके दिल पर राज हो, वो सब संतुष्ट और खुश हों, यानी वो आपको अपना राजा मान लें, तो ये राज करने का संस्कार वापरी उससे भी काम आएगा। और कुछ आत्माएं हम में से ऐसी भी होंगी, मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ, कि जब भगवान देखेगा कि संसार में मेरे संसार में गड़बड़ बहुत होने लगी तो उनको नियुक्त करेगा, जाओ जरा ये काम ठीक करके आओ। ये भी होगा, जैसे आप विवेकानंद के बारे में जानते हो, वो तो पता नहीं होगा। तो रामकृष्ण परमहंस ध्यान में जाता था ना बहुत, जब से वो छोटा सा था लोग तो कहते थे इसको चक्कर आ गया, भाई बेहोश हो गया बच्चा, पता नहीं क्या, पर वो जाता था ध्यान में। तो जब वो बड़ा हो गया था तो वो ध्यान में गया, जैसे उसको फील हो रहा वो ऊपर जा रहा है, तो उसने देखा सप्तऋषि तपस्या में बैठे हैं कहीं, और ये एक के पास पहुंच गया और इसको फील हुआ मुझे तुम्हारी तलाश है, और उसने इसको कहा मुझे संसार में आना है काम करने के लिए। और इधर विवेकानंद की माँ भक्ति कर रही थी शिव की कि मुझे अपना एक गण भेज दो, गण जन्म लिया नरेंद्र ने, विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र बहुत तेज तराक था, गुस्सा बहुत करता था, तो उसकी माँ कहा करती थी मैंने तो शिव भगवान से प्रार्थना की थी मुझे गण भेज दो, उसने अपना भूत भेज दिया है। तो वो क्या करते थे, ये बहुत गुस्सा करता था, वो एक बाल्टी पानी इसके ऊपर डाल देती थी ठंडा, और ये ध्यान में बैठ जाता था श्याम। तो जब ये रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा तो उसको सब याद आ गया, अच्छा तुम आ गए, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था, तब से उसे पता चल गया भाई ये आ गया। तो इसने अपनी शक्तियों से उसे कंट्रोल किया, उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था, जो बहुत बुद्धिमान था, उसके प्रश्नों का उत्तर रामकृष्ण परमहंस के बारे में था, वो तो भोला वाला सा था ना, उसकी स्थिति के कारण उसको परमहंस की उपाधि लोगों ने दे दी थी। परमहंस माने बहुत सुंदर मन स्थिति, विकारों से परे, संभाव, आनंद में रहने वाले, पवित्र। तो ये ऐसे है, ये जो उसको साक्षात्कार हुआ ऐसा कुछ है नहीं कि ऊपर सप्तऋषि कोई तपस्या कर रहे हो, जैसे शिव बाबा ने इन आत्माओं को अपॉइंट किया हुआ है, जाओ क्रिश्चियन मिशनरी बहुत तेजी से काम कर रही भारत में, उसको रोक दो। विवेकानंद और दयानंद दो ऐसी आत्माएं आई जिन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को रोक दिया, उसके प्रभाव को ढीला कर दिया। तो हम में से ही कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हें तो अपर कलयुग में बाबा यूज करेगा, जैसे हम कहें ड्रामा बना बनाया है, पर वो यूज करेगा कि ये आपत्ति मेरी जन्मभूमि पर आई है, तुम जाओ मुक्त करो। तो इस सब प्रारब्ध के पीछे बहुत सारा रहस्य है। कुछ अपने हम में से ऐसी हैं जिन्हें अपने देश के लिए बहुत प्यार, किसी और चीज के लिए बहुत प्यार, नारी के लिए बहुत प्यार सम्मान, तो वो काम करेंगे, ये प्रारब्ध इसी तरह तैयार है। तो एक एक चीज हमारी, हमारे भावी जो एक्ट होंगे, पार्ट होंगे, उन्हें प्रभावित करेंगे, उनका निर्माण। तो कल हम एक अभ्यास करेंगे, बाबा हमारे सामने है, बाप दादा, और हमें याद दिला रहे हैं बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। बहुत सुंदर संकल्प है, मैं एक महान आत्मा हूं, बहुत अति अति सुंदर, जिससे बहुत सुंदर वाइब्रेशन हमारे ब्रेन को भी जाते हैं, सारे संसार को भी जाते हैं। तो जैसे इस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे, बाप दादा हमारे सामने और दृष्टि देते हुए बोल रहे हैं बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। परसों बाबा का दिन होगा, लोग को सकाश देंगे, याद है हमने पीछे कराया था बहुत, सब इसको फिर से रिवाइज करेंगे, लोग को सकाश देना वो हमारा मुख्य कार्य है। अब दिन में कई बार घूमते हुए या बैठकर योग करते, तब सवेरे से आम रात को 10 बार हो जाएगा, लोग सामने मैं अपना मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी मुझसे दोनों नैनों से किरणें पड़ रही है ग्लोब पर, परसों बाबा का दिन है, बहुत आनंद में रहेंगे। वही अभ्यास जो हर बार करते हैं, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर हम देखेंगे बाप दादा आ रहे हैं, बाबा शिव बाबा, केवल शिव बाबा को देखेंगे। वहां जो प्रिया सामने आ गया, आंखों के सामने उसकी किरणें पड़ रही हैं। बस इस तरह सभी बहुत अच्छा दिवस करेंगे। ओम सत्य।